बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्, सानंदमानंद विने बसंतम्, आनंदकंदम हतपापवृंदम्, वाराणसीनाथ मनाथनाथम्, श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज मुरली मनोहर नंदलाला,
भज मुरली मनोहर नंदलाला,
कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। जैसा कि मैंने आपको कल अवगत कराया था कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पूर्व संकल्प मंत्र का उच्चारण करना अति अनिवार्य होता है, तो आप संकल्प मंत्र का उच्चारण करें बड़े भाव और निष्ठा के साथ। सभी सामूहिक रूपेण इस संकल्प मंत्र का उच्चारण करेंगे, पहले हम बोलेंगे उसके बाद उसकी आप पुनरावृत्ति करेंगे। ओम तत्सत,
ओम तत्सत,
द्वैतस्य
द्वैतस्य
ब्रह्मणो अन्हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे। सभी लोग बोले अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतरगते कीलकनाम संवत्सरे अमुक नामनोहम। अपने अपने नाम का उच्चारण कीजिए। अमुक गोत्र उत्पन्नोहम। अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए और बोलिए अद्य। सभी लोग बोले अद्य मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठम्यां तिथौ मंगलवासरे महाराष्ट्र प्रांते मुंबईनगर्यां श्री प्रेमपुरी आश्रमे श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवणार्थम् प्रथम दिवसे प्रथम उपस्थितौ विनियोगः अनेन श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवणेन माम धर्मः अर्थः कामः मोक्षः फलानां प्राप्तिः अस्तु एवं च अभीष्टफल सिद्धिः भगवत्कृपा अस्तु। श्री कृष्ण परमात्मा देवता प्रियंताम् इति कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग अपने चित्त की वृत्ति को समाहित करते हुए श्रीमद् भागवत की जो दिव्य चर्चा है उसे श्रवण करें। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। कल का जो मंगलाचरण था वह महात्म्य में श्री सूत जी महाराज ने किया था। आज का जो मंगलाचरण है वो प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जन्माद्यस्य एतो अन्यादितरथश्चार्थे शुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो बारी मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सत्यं परम धीमहि, जो सत्य है, किसी भी काल में जिसका बाध नहीं होता है, त्रैकाला बाधित्वम सत्यत्वम, किम नाम सत्यत्वम, बोले त्रैकाला बाधित्वम, तीनों ही काल में जो सदा सर्वदा निरंतर रहता है, ऐसे उससे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। जो परमात्मा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में हेतु है, जिसका सभी कार्यों में अन्वय है, अन्वित है, हमारे यहां कहा गया है यत सत्वे यत सत्वम, यत अभावे यत अभाव, यत सत्वम धूम सत्वे बन्नी सत्वम, ये धूम है तो अग्नि जरूर है, धुमा भावे बन्नी भावा, ये धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं, ऐसा यहां पर यस सत्वे यस सत्वम अन्वय व्यतिरेक, बहुत ही सुंदर विवेचन। अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से किसी भी वस्तु की जब सिद्धि करनी होती है तो हमारे यहां न्याय दर्शन में बतलाया गया है अन्वय और व्यतिरेक का अवलंबन लेने पड़ता है। यह है तो यह होगा, यह नहीं है तो यह भी नहीं होगा। धूम सत्वे, ये धूम है तो बन्नी जरूर होगी, यथा पर्वतो बन्नीमान धूमात, पर्वतो बन्नीमान धूमात, पर्वत में अग्नि है कैसे जाना, हम पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसा कोई पर्वत शिखर है हम जहां पहुंच नहीं सकते हैं, हम कैसे कहेंगे वहां पर अग्नि है। तो बोले धूमात पर्वतो बन्नीमान, पर्वत में अग्नि है क्यों कि धूमात, धूम चिन्ह के द्वारा हमने जान लिया कि वहां पर अग्नि है। तो धूम सत्वे, ध्यान देना, धूम सत्वे बन्नी सत्वम, धूम है तो अग्नि जरूर होगी। अर्थात दूसरे ढंग से यूं भी समझ लें, कार्य सत्वे कारण सत्वम, कार्य सत्वे कारण सत्वम, यदि कार्य है तो कारण जरूर होगा, कारण जरूर होगा। हम घट को देखते हैं तो कुलाल, कुलाल माने कुम्हार का होना, उसका अस्तित्व का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कार्य सत्वम, हम पट को देखते हैं, पट सत्वे वस्त्र है तो इसका बनाने वाला जरूर होगा, पट सत्वम पट माने कार्य, एक कार्य है तो इसका कारण भी अवश्य होगा। ध्यान देना, जगत सत्वम जगत है तो जगत का कोई सृजनकर्ता भी जरूर होगा। मंगलाचरण में यहां वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से वो सिद्ध करते हैं, यह जगत है तो जगत का कोई कर्ता भी जरूर है। अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से परमात्मा की सिद्धि करना, ध्यान देना। भागवत का ये जो मंगलाचरण है बहुत महत्वपूर्ण है, परमात्मा है, परमात्मा है किसके द्वारा, बोले कार्य सत्वे कारण सत्वम। कई बार कुछ वस्तुएं दिखती नहीं है, ध्यान देना, कई बार कुछ वस्तुएं दिखती नहीं है लेकिन वो कार्य के माध्यम से उस कारण को सिद्ध किया जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें परमात्मा नहीं दिखता है, तो उस कार्य के द्वारा हम कारण की सिद्धि करते हैं, तो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय होना ये आदमी को दिखता है, व्यक्ति को दिखता है, जगत दिखता है, स्थिति भी दिखती है और लय होता भी दिखता है। तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों को देख करके सिद्ध होता है कि इसका सृजन करता, इसका उत्पत्ति करता, इसको बना के रखने वाला और इसका नाश करने वाला कोई है। तो यस्यत्वे यस्यत्वम् इद अभावे इद अभावा, वितरेक माने अभाव, वितरेक माने, यद्यपि आप लोग स्वाध्यायी लोग हैं, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए समझना, अन्वय और वितरेक के माध्यम से यहां पर सिद्ध किया है। यस्यत्वे यस्यत्वम् इद अभावे इद अभावा, यहां पर सिद्धांत है। आइए आगे कह रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरया, आदि कवये मुह्यंती, ऐसे इस जगत को देख करके अच्छे अच्छे विद्वान मोह में पड़ जाते हैं, मुह्यंती मोह से अन्वित हो जाते हैं, मोहियंती इतना अच्छे अच्छे लोग, वह जो परमात्मा है उसकी जो सृष्टि है उसको देख करके लोग कितने मोह में पड़ जाते हैं। तेजो बारी, वो परमात्मा उनमें कैसे है ध्यान देना, तेजो बारी था विनमयो, तेज में बारी, जल में, आकाश में, अग्नि में, सभी में वह परमात्मा का अन्वय है, विनमय है। ध्यान देना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पृथ्वी में तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्याश्च, शीत स्पर्श वत् त्यापः, जल के अंदर वह शीतत्व के रूप में है, मधुरत्व के रूप में है, पृथ्वी में गंधत्व, गंधत्व के रूप में है, अग्नि के अंदर वो उष्णता के रूप में है, तेजो बारी इथा विनमयो, इन पुष्पों के अंदर सुंदरता के रूप से है। तो परमात्मा का सर्वत्र होना यहां पर बताया जा रहा है, धामना स्वयं सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमही, ऐसा जो चर अचर सर्वत्र जो व्याप्त परमात्मा है उस परमात्मा श्री कृष्ण में मेरा बार बार वंदन है, मेरा बार बार स्तवन है, ऐसा यहां पर वंदन किया है उस व्यापक परमपिता परमेश्वर को। कल आपने महात्म्य की कथा सुनी, आज प्रथम स्कंद आप सुन रहे हैं, आरंभ कर दिया आपने सुनना, इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, ये भागवत का परिचय, इष्टंग का भागवत है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले प्रश्न किया है, सुनो ध्यान से, क्या प्रश्न किया, बोले किम श्रेया, किम श्रेया शास्त्र सारका स्वा अवतार प्रयोजनम, और किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गता, इत्ते सूतमुद्दिश्य षट् प्रश्ना मुनिभिः कृताः। षट् प्रश्ना, 6 प्रश्न किए गए हैं, स्वाध्याय से सुनना, 6 प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, किम श्रेया, इस संसार में श्रेय चीज क्या है, श्रेय अब अपनी सोच को भागवत से मिलाते चलो। किम श्रेय यहा, श्रेय क्या है आगे बताएंगे। शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार क्या है दूसरा प्रश्न। कहा स्वावतार प्रयोजनम, भगवान ने अवतार लिए हैं उन अवतारों का प्रयोजन क्या है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदा अपिन प्रवर्तते, बिना उद्देश्य के बिना प्रयोजन के मंद से मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। फिर तो ये परमात्मा है, तो इस परमात्मा ने अवतार लिए इन अवतारों का प्रयोजन क्या है। स्वा अवतार प्रयोजनम तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा किम कर्म, परमात्मा का कर्म क्या है, किम कर्म, और के अवतारश्च कितने अवतार हुए। पांचवा और धर्म कम शरणम गतहा, जब प्रभु चले गए तो धर्म कम शरणम गतहा, वह धर्म किसकी शरण में गया है। ये छह प्रश्न है, समझ में आए, छह प्रश्न किए। अति संक्षेप में, यद्यपि पूरी श्रीमद् भागवत इन प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन आपको संक्षेप में इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेया, कृष्ण की भक्ति है वो क्या है, परम श्रेया। अब ध्यान देना, आप 24 घंटे जिस झंझावात में फंसे रहते हो वो श्रेय नहीं है, वो मुख्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो सर्वस्व नहीं है। श्रेय क्या है, बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेया। इस जीवन में कोई भी चीज श्रेयस्कर है, उत्कृष्ट है, महान है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति है। क्या श्रेय है याद रखना, भगवान की भक्ति ही श्रेयस्कर है। कृष्ण भक्ति परम श्रेया, शास्त्र सारश्च सही बही। बोले शास्त्रों का सार क्या है, ये जितने शास्त्र हैं इन शास्त्रों का सार क्या है। तो कहा शास्त्र सारश्च सही बही, सा एव, सा सह तौ ते तम तौ तान तेन त्याभ्याम तई तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु तत्शब्द के रूप। सह क्या, सह माने अभी जो मैंने कहा, अभी क्या कहा, मैंने कहा कृष्ण भक्ति ही श्रेय है। तो कहा शास्त्रों का सार भी भगवान की भक्ति ही है। शास्त्रों का सार क्या निकला, भगवान की भक्ति करना। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या, प्रयोजन प्रयोजनम सतो रक्षाम, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है। कहा सतो रक्षाम, भगवान क्या करता है उन अवतारों के द्वारा, सत जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। इदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का वाक्य है, मैं दुनिया में क्यों आता हूं, किस लिए आता हूं, ध्यान देना। भगवान ने कहा कि मैं संसार में क्यों आता हूं, युगी युगे युग युग में आता हूं, बार बार आता हूं, जब मेरा भगत मुझे पुकारता है मैं वहीं आ जाता हूं, मैं वहीं आ जाता हूं, उसी जगह पर प्रकट हो जाता हूं। ये गीता में भगवान ने कहा, देखो भागवत में भी कह रहे हैं, गीता में भी कह रहे हैं, और रामायण में भी कह रहे हैं कि जब जब होए
धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। सज्जन पीरा सताम रक्षो, सताम रक्षो, मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? बोले सतो रक्षाम, संतों की भक्तों की गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ही तो मैं आता हूं। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन रक्षा करना। किम कर्मा के अवतारश्च, कर्म भगवान का क्या है? बोले सृष्ट्यादि लक्षणम, सृष्ट्यादि लक्षणम सृजन करना। जिसने जैसा कर्म किया, ध्यान देना बड़ी व्यवस्था ये अटपटी है, बड़ी अटपटी व्यवस्था है। विनायकम प्रकुर्वाणा रचया मास बानरा, ऐसा नहीं है प्रकाश भाई? विनायकम प्रकुर्वाणा रचया मास बानरा, बना रहे थे विनायक जी, बना रहे थे गणेश जी और बन गए बंदर। विनायकम प्रकुर्वाणा, बना रहे थे गणेश जी और बन गए बंदर। विनायकम प्रकुर्वाणा रचया मोश बानर, ऐसी सृष्टि नहीं, ऐसी रचना नहीं। हम कुछ कर रहे थे, कुछ हो गया कुछ, ऐसा नहीं। बना रहे थे कुछ, बन गया कुछ। भगवान कहते हैं भगवान की रचना देखो, हम कई बार कुछ बनाने चलते हैं, बना कुछ डालते हैं, बोलने कुछ डालते हैं, चाहते हैं बोल कुछ और देते हैं, जाते हैं कहीं के लिए चल कहीं और पढ़ते हैं। ध्यान देना, ये आपका ऐसा करना हो सकता है, लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं, हमारे में तो यथावत होता है। जिस जीव ने जैसा कर्म किया, जो कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार उसको वैसा ही फल देना। कहीं पर भी इतकिंचित कथनचित भी कोई निर्णच नहीं, कोई भेद नहीं किसी भी प्रकार का। जो जैसा तद्वत वैसा ही उसके जीवन की वो प्रक्रिया होगी। यथा पूर्वम अकल्पय, कितनी सुंदर व्यवस्था। यथा पूर्वम, यथा पूर्वम, जो उसका पूर्व में जैसा कर्म था उसके कर्म के आधार पर उसकी रचना कर देना, बना देना। किम कर्म, बोले कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, जो जैसा जीव उसके अनुसार प्रलय के बाद में जब पुनः सृष्टि होती है तो वैसी उसकी रचना कर देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से यहां पर ये छह प्रश्नों के उत्तर दिए गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अवतारों की चर्चा की गई। अवतार क्या है? हमारे यहां विग्रह किया है, अब तान अघान नीचान तारेत इति अवतारा। किम नाम अवतार, अवतार क्या है, अवतार किसे कहते हैं? बोले अब का अर्थ हुआ तान, तान मतलब अघान, अघान मतलब नीचान। जो अघों को, ध्यान देना, एक भक्त भजन करके, आप जैसे साधक कथा सुन करके, जप करके, तीर्थ करके, व्रत करके, शुभाचरण करके तर सकते हैं। ध्यान देना कितना अच्छा अर्थ किया गया अवतार का। आप जैसे भक्त लोग माला फेर के, जाप करके, कथा सुन के, स्नान करके, भजन करके, बहुत कुछ करके तर सकते हैं। यहां अर्थ किया गया अवतान अघान और इस प्रक्रिया नीचान। जो अग हैं, पापी हैं, नीच हैं, तारेति इति अवतार। भक्तों को तो तरना ही तरना है, पर जो नीचों को भी जो तार दे, बोले उसका नाम है अवतार। यहां 24 अवतारों की चर्चा आई है, संक्षेप में। शनकादियों का अवतार, बरहा अवतार, नारद अवतार, नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंहा अवतार, बावन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, रामावतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरिहर अवतार और हंसा अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, ये 24 अवतारों की बात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद। सब बोलो
गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे विवेचन करते हैं कि यम प्रव्रजंत, आगे वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, सुखम मुखाद मृतम द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरुहो रसिका भुवि भावुका। भागवत का परिचय दे रहे हैं। भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कल्प तरो, निगम माने वेद, ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर, वेद रूपी कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, उस वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर एक सुंदर फल लगा हुआ है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, फलम एक फल लगा हुआ है। कैसा है? कैसा है? बोल बिल्कुल पका हुआ, गलितम फलम। गलितम मने पका हुआ, बिल्कुल पीला पड़ चुका है, बड़ा सुंदर फल है। गलितम फलम, बोले महाराज आपने कैसे कह दिया गलितम फलम? बिना खाए बिना चाखे कैसे कह दिया गलितम फलम? का इसलिए कह दिया कि शुक मुखात, शुक माने जो तोता होता है, उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है और पका होता है। कच्चे फल में कभी तोता चोंच नहीं मारता है। शुक मुखात, तोता ने चोंच मारी, इसके मतलब है कि निश्चित पक्का ये फल पका हुआ है और मीठा भी है। शुक मुखात, ऐसा ये फल है। द्रव संयुतम, द्रवता है, रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है। ध्यान देना, मौसमी का गिलास, माल्टा का गिलास, संतरे का गिलास भरते हैं और चुटकी में चला जाता अंदर। पर कहा कि ये जो रस है ये कितना पियूं? आलयम। कैसा आलयम? ये कभी घटता ही नहीं, ये कभी, इसको पियो, पीते रहो, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, बार 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 पियो, बारंबार पियो, फिर भी ये खत्म होने वाला नहीं है। आलयम रसमालयम। कैसे पियो? बोले मुहुर मुहू, मुहुर माने मुहुर मुहू माने बारंबार। ऐसा मत सोचो मैं कथा एक बार सुन ली है अब क्या सुनना है। प्रेमपुरी आश्रम में तो प्रति वर्ष भागवत सप्ताह होता है, होता ना, होता ना, प्रतिवर्ष महाराज भी एक बार सुन लिया, फिर दो बार, फिर तीन बार, बार बार क्यों? कभी आपने प्रश्न किया कि बार बार चाय क्यों पीते हैं? कभी आपने है भी सोचा बार बार रोटी क्यों खाते हैं? बार बार रोटी क्यों खाते हैं, बार बार चाय क्यों पीते हैं, बार बार नाश्ता क्यों करते हैं? इस पर तो कभी विचार नहीं किया। और बार बार कथा क्यों सुनते हैं, इस पर विचार कर लिया। जब बार बार भोजन करते हैं तो बार बार भजन भी करो। बार बार भोजन है तो बार बार भजन भी होगा, और फिर बार बार चाय है तो बार बार जाप भी करो, माला भी फेरो, मंदिर भी जाओ। चालाकी नहीं, राम नाम के आलसी मैं नहीं कहूंगा, आप ऐसे हैं ही नहीं। चलो आया है तो बांच देता हूं कि राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार और तुलसी ऐसे जीव को बार बार नहीं नमस्कार। धिक्कार क्यों? धिक्कार नहीं बोलता है, ऐसे जीवों को नमस्कार करता है। प्रभु तेरे को सद्बुद्धि दे, सदों को सद्विचार दे। वो धिक्कारता कभी किसी को नहीं है, महात्मा खासियत होती है। श्रीधर जी महाराज ने भागवत में आप देखो, शिष्यपाल ने गाली दी है, हर गाली का अर्थ श्रीधर जी महाराज ने स्तुति कर दिया। क्या कर दिया? स्तुति कर दिया। दक्ष ने गाली दी, हर गाली का अर्थ श्रीधर जी महाराज ने स्तुति कर दिया। महात्मा तो गाली कभी बोलता ही नहीं है, अब शब्द तो कभी बोलता ही नहीं है, क्यों बोले धिक्कार? वो तो नमस्कार करेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर मुहो, मुहुर मुहो। क्या बन के, क्या बन के? बोले भूभी भावुका, भावुका भूभी। संस्कृत का थोड़ा ज्ञान हो तो बड़ा आनंद आता है, सुनने में भी कहने में भी। भावुका भूभी किम भूभी? बोले भावुका भूभी, भावुक बन के। कैसे? कथा कहे सुनो, भावुक बन के, भाव से ओत प्रोत होकर के, जैसे कोई घड़ा लेकर के चलते तो छलकता है, हमारा भाव छलकना चाहिए। जब हम भावुक होकर के कथा को सुनेंगे, वो भी भावुक, तो उसका आनंद ही अलग है, उसका दबाव से नहीं। बच्चों ने कहा कि मम्मी प्रेमपुरी आश्रम में कथा हो रही, वहां जाया करो। घर में आप बैठी रहती हैं, बहू से थोड़ी बातचीत हो जाती है, बेटी से बातचीत रहती, मम्मी आश्रम से नहीं जाया करो। इसलिए नहीं, इसलिए नहीं आना है। आना कैसे? वो भी भावुक का है, भावुक का वो भी ही, भावुक बन के जब हम कथा को सुनेंगे तो आनंद आएगा। और एक आपको बढ़िया बात बताऊं, बहुत सुंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको बूढ़ा, ये फल कैसा है, इसको बिना दांत वाला भी खा सकता है और दांत वाला भी खा सकता है, छोटा बच्चा भी खा सकता है, जो अपथ्य जिसको लगा हुआ है वो भी खा सकता है, इसका पान सभी कर सकते हैं, बूढ़ा जवान युवा स्त्री पुरुष कोई भी। ऐसा ये दिव्य सुंदर सरस निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद मृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हुर सिका भुवि भावुका भावुका भुवि भावुक बन के इसका पान करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक छोटा सा श्लोक और आता है, धर्मो प्रोज्जित कैतबुत्र परमो धर्मो प्रोज्जित कैतबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। आज बड़ा विलक्षण समाज में समय आ गया है, बड़ी विलक्षण स्थिति आ गई है। बोले धर्मो प्रोज्जित कैतबुत्र, धर्म उज्जिता उज्जिता कथिता उज्जिता कथिता, धर्म का उज्जन उज्जन माने कथन, धर्म का जो कथन है कैतबुत्र कैतब पूर्ण हो गया है, कपट पूर्ण हो गया है। आप देखें एक वकील खड़ा होता है जब कोर्ट में, थोड़ा बात को विस्तार दे दूं, पॉइंट एक होता है, वकील दो खड़े होते हैं और दोनों कहते ये सत्य है ये सत्य है। भाई दो में एक तो असत्य जरूर होगा, दो में एक तो असत्य जरूर होगा, लेकिन दोनों कहते मेरी बात सही है और मेरी बात सही है। ला का जो कानून है, जो पॉइंट है, जो धारा है, एक ही पॉइंट को लेकर के दोनों बोलते हैं। ध्यान देना, दोनों अपनी अपनी बात करते हैं, दुहाई देते हैं, एक तो कोई जरूर गलत होगा। तो वहां क्या है, कैतब है, क्या है कपट है। धर्मो प्रोज्जित कैतबोत्तर परमो, आज के समाज में धर्म का उज्जन सत्य का कथन, उज्जन माने कथन, धर्म का उज्जन धर्म का कथन नीति का कथन, बोले कैतब पूर्ण हो गया है कपट पूर्ण हो गया है। बात कुछ होती है और घुमा के ऐसी बोली जाती है, उसे अच्छा बना के सजा धजा के असत्य को भी सत्य से मंडित करके उसे प्रस्तुत किया जाता है। वेदव्यास कह रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति आ गई है। धर्मो प्रोज्जित कैतबोत्र, कई लोग धर्म की आड़ में धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर के चलाते हैं, ऐसा नहीं होना। निर्मत्सराणाम सताम, सताम हो जो सत्य है, जो सत्य है, सताम माने जो सत्य है, उस सत्य की व्याख्या आज के लोग इस कलिकाल में लोग कपट पूर्ण करते हैं। तो कपट पूर्ण व्याख्या नहीं, यथार्थ व्याख्या की जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो धर्म का उज्जन इस प्रकार से होना चाहिए, जब इस विधि से होगा तो ही हमारा धर्म उन्नति और प्रगति को प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक छोटा सा भजन,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मेतया तर्भो बुनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत में चर्चा आ रही है, श्रुत जी महाराज शौनकादियों को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जवाब पुत्रेति तन्मयतया तर्भो बुने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। ध्यान देना, संसार में व्यक्ति आए तो कुछ ऐसा कृत्य करके जाए। ध्यान देना, चींटी भी छोटी सी छोटी जो चींटी जीव, उसका भी एक लक्ष्य होता है दुनिया में, उसका भी एक लक्ष्य होता है दुनिया में आने का। चींटी को आप देखिए, ईश्वर की कितनी छोटी कृति है, लेकिन उसका लक्ष्य, चींटी एक छोटे से चावल के दाने को लेकर के चढ़ती है, हमने कई बार देखा दीवार पर चढ़ती है, छोटा सा अन्न का टुकड़ा लेकर के चढ़ती है, गिरती है, फिर पकड़ती, फिर चढ़ती, फिर गिरती। आदमी का, व्यक्ति का कोई लक्ष्य हो, उद्देश्य होना चाहिए। केवल खाना सोना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य उस परम तत्व की प्राप्ति है। हम दुनिया में क्यों आए, हम किस लिए आए? ध्यान देना, आयुषा क्षण ये कोपी, आयुषा क्षण ये कोपी, सर्वरत्नैन लभ्यते। आयुषा क्षण ये कोपी, सर्वरत्नैन लभ्यते, ए वृथा नीयते येन सा प्रमाधी नराधमा। आयुषा क्षण ये कोपी, कितने कीमत कीमती क्षण है हमारी जिंदगी की। आयुषा क्षण एकोपी, जो आदि मृत्यु सैया पे लेता है, अभी अभी जाने वाला है, और अब वो कहे कि हम एक क्षण को और प्राप्त कर लें, बोले मिलने वाला नहीं है। सर्वरत्न नहीं न लभ्यते, जिंदगी में जो उसने कमाया है, और बोले मैं ये सारी संपत्ति आपको देता हूं, मेरी एक घड़ी बढ़ा दो, क्या बढ़ सकती है? एक मिनट बढ़ा दो, बढ़ सकता है? नहीं। सर्व रत्नई न लभ्यते, सब कुछ दे देने के बाद भी एक भी मिनट, एक भी घड़ी, एक भी पल दोबारा मिल सकता नहीं है। इतनी हमारी जिंदगी कीमती है। हम दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए? यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो इस दुनिया में आना ही व्यर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, चिंतन किया, इस माया में क्या फंसना है, इस पचड़े में क्यों फंसना है। महान व्यक्ति होता है, लक्ष्य की पूर्ति हो रही है तो ठीक है, व्यर्थ में क्या दुनिया में जीना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज का यहां पर चरित्र बड़ा सुंदर आ रहा है। कुछ वर्णन स्कंद पुराण का है, कुछ कौशिकी संहिता का है, और कुछ श्रीमद् भागवत का है। हम तीनों का समन्वय करके आपको बताने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में चर्चा आ रही है, राशेश्वरी भगवती राधा जी के लीला सुख। राशेश्वरी राधा जी ने विचार किया कि हम धराधाम पर जा रहे हैं। शुक ने सोचा कि हम यहां कैसे रह सकती हैं। ये कथा गर्ग संहिता में भी आती है, हम कैसे रह सकते हैं। तो वही लीला सुख भगवान आस्तोल कपास पाणी, कपाल पाणी चंद्र मोरेश्वर भूत भावन परम पावन भगवान शिव का जो आश्रम है हिमालय में, वहीं एक खंडित अंडे के रूप से वहीं पर वो आगे विवेचन करते हैं। कौशिकी संहिता में चर्चा आई है, एक दिन भगवती परा अम्बा जगदम्बा मातेश्वरी पार्वती ने चिंतन किया, हे कपाल पाणी चंद्र मौलेश्वर, आपसे मेरा कभी बिलगाव न हो, ऐसी कोई कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं जरूर वो कथा सुनाऊंगा, लेकिन उस कथा सुनने के पूर्व देखो कोई बाहर सुन तो नहीं रहा हमारी बातों को। पार्वती ने जाके झांका, बोले कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं है, मात्र एक खंडित अंडा पड़ा हुआ है।
कथा सुनाइए। चर्चा आ रही है कि भगवान शंकर ने कथा सुनाई, पार्वती कथा सुन रही हैं, बड़ा आनंद प्रवाह आ रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कभी कभी इतना कथा में मस्त हो जाता हूं कि मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, अब मुझे क्या मालूम कि आप सुन रही कि सो रही हैं। तो हमें कुछ मालूम तो पढ़ना चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं हुंकारी बीच में भरती रहूंगी, ओम ओम बोलती रहूंगी, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। ठीक है, इससे मैं जान जाऊंगा कि आप जाग रहे हैं। भगवान शिव ने कथा शुरू की, अमर कथा। पार्वती बीच बीच में हूं करने लगी। 10 स्कंद पर्यंत कथा सुनी, 11 स्कंद में, 11वें स्कंद में आई तो भाव समाधि। लीला सुख ने सोचा कि अब तो आवाज आना बंद हो गई, लगता कथा बंद हो जाएगी, माताजी की समाधि लग गई, अब क्या करना चाहिए, कथा विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ये तोता की खासियत होती है कि जिस आवाज में अंगला बोलता उसी आवाज में वह भी बोल सकता है। तो मैया ठीक पार्वती की ही आवाज में, ओम की आवाज, हुंकारी की आवाज, शंकर कथा कहते चले जा रहे हैं। 11वां स्कंद खत्म हुआ, 12वें में पहुंची तो एकदम झटका लगा पार्वती को। प्रभु जी, वो 11वें स्कंद में जो उद्धव कृष्ण का संवाद आता वो तो मैं सुन ही नहीं पाई। बोले तो कहां थी, कहां थे? बोले हम थे तो यहीं, लेकिन भाव में चले गए थे। इतने भाव में नहीं जाओ जो हमारा मूल लक्ष्य ही भटक जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, तो हुंकारी कौन भरता रहा? शंकर ने कहा ये तो हमारी कथा की चोरी हो गई है। चुपके चुपके सुन रहा है, कथा को चोरी से नहीं सुनना है, ईमानदारी से सुनना है, ईमानदारी से सुनना है। देखा इतनी गुह्य कथा है, आप कितने भाग्यशाली हैं, देखो आप कितनी गुह्य कथा, और हमारे बैठे देवता जी सामने विराजमान हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, किस विधि से कथा को सुना रहे हैं? बड़े भाव से कथा चल रही है, श्रवण करो। भगवान शंकर ने कहा हमारी कथा का कि शेंद लग गई है कहीं से। भगवान शंकर त्रिशूल लेके निकले तो वो बैठा हुआ था, तो अच्छा ये कथा चोरी से सुन रहा है। भगवान शिव ने त्रिशूल लिया और यूं फेंका, फेंकने के पहले ही उड़े। वेद व्यास की पत्नी पिंगला केशों को सुधार रही थी, अट्टालिका पे खड़ी थी, उस सूक्ष्म बनाकर के मुख में प्रवेश कर गए, उधर के अंदर है, नहीं जाऊंगा दुनिया में, माया से समलंकृत है, माया आच्छन्न जगत हमको अच्छा लगता नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे, भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। अरे देवी हेषा गुणमयी, देवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। एषा माया दैवी, एषा माया दैवी, ये देवी माया है, देवी ही सागुणमयी। इस माया से बचना बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी बोले मैं बाहर नहीं जाऊंगा, 12 वर्ष बीत गए हैं, गर्भ के अंदर हैं। एक दिन वेद व्यास ने गर्भ से कहा बाहर आओ महाराज, कौन से विराजमान देवता हो, बाहर निकलो। बोले हमको दुनिया अच्छी लगती है, हमको माया का भय है, हम नहीं आएंगे। प्रार्थना की बाहर आओ। बोले एक आने की शर्त होगी, यदि भगवान कृष्ण आश्वासन दें कि मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भगवान कृष्ण वचन दें और उपस्थित हों उस समय जब मैं दुनिया में बाहर आऊं, तो मैं बनना नहीं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वेद अभ्यास ने भगवान कृष्ण का आवाहन किया, नंदन नंदन मुरली मनोहर का पदार्पण हुआ और उधर कहा कि आइए भगवान श्याम सुंदर आ गए। तो उसी पावन बेला में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव महाराज ने माता को नमस्कार किया, पिताजी को प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। यम प्रव्रजंतम अनुपेत प्रव्रजंतम गच्छन्तम यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वय पायनो बिरह कातर आज वाब। कब से वेद व्यास जी महाराज प्रतीक्षा में थे कि पुत्र आएगा और पुत्र को लेकर के बड़े प्यार से हाथों में लेकर के गोदी में लेकर के दुलार करूंगा, प्यार करूंगा, लाड़ करूंगा, स्नेह करूंगा और पुत्र तो जन्मते ही प्रस्थान कर गया, नमस्कार किया और चलता बना। ध्यान देना, यम प्रव्रजंत अपीत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजवाब। विरह से कातुर, विरह से व्यथित होकर के पीछे पीछे थोड़ा चिंतन करो। वेद व्यास जी महाराज कितने पुराणों के रचयिता, ब्रह्मसूत्र महाभारत तमाम ग्रंथों का सृजन किया। जब उनके अंदर इस प्रकार का मोह है तो आप लोगों की क्या स्थिति होगी, सोचो ना। जब वेद व्यास जी महाराज पुत्र के पीछे पीछे अभ्रह करते हुए हे पुत्र खड़े हो जाओ, हे पुत्र खड़े हो जाओ, मैंने एक बार भी तुमको प्यार से जी भर के देखा नहीं, हे मेरे पुत्र मैंने एक बार भी आपके माथे को नहीं छूंगा है, हे मेरे बेटे एक बार भी तुमको मैंने गोद में लेकर के दुलार और प्यार नहीं किया है, मेरे पुत्र खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पर कौन सुनता है, कोई मतलब नहीं। तरभो बुने दू, तरुओं ने विचार किया, ये बेचारे वेद व्यास दौड़ रहे हैं, पुत्र सुनता नहीं है। तब तरुओं ने बहुत अच्छी बात की, हे वेद व्यास जी महाराज एक प्रार्थना आपसे करता हूं, आप बतलाने की कृपा करें, प्रभु हम कैसे हैं, बोले आप जड़ हैं, और आप कैसे हैं, बोले मैं चेतन हूं। वेद व्यास जी बोले आप जड़ हो और आप बोले मैं चेतन हूं, बड़ी अच्छी बात उन तरुओं ने कही। तरु बोले, वृक्ष बोले कि वेद व्यास जी महाराज मैं वर्ष में असंख्य फल देता हूं, असंख्य फल देता हूं, कितने फलों को देता हूं, और वो सारे के सारे फल मैं समाज को दे देता हूं, लोगों को दे देता हूं, दुनिया को दे देता हूं, उन फलों में से एक भी फल अपने पास नहीं रखता हूं, और भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें एक फल दिया और एक फल भी तुम्हें जो एक फल मिला है उसके लिए आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो और रो रहे हो। व्यास की आंखें खुल गई, वेद व्यास की आंखें खुल गई कि इन तरुओं ने हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया, हम असंख्य फलों को देश समाज दुनिया के लिए दे देता हूं और मुझे एक मिला और मैं उसको भी नहीं त्याग सकता हूं, उसको भी नहीं दे सकता हूं, आप इससे थोड़ी शिक्षा लो। वेद व्यास जी वापस लौट आए, वेद व्यास जी तुमने असंख्य फल दिए तो चलो ठीक एक मैं भी दे देता हूं, अब मैं थोड़ा आपसे भी कुछ कह सकता हूं। है वृक्षों ने असंख्य फल समाज को दे दिए, वेद व्यास भी दे दिए, लौट आए वापस। आपने कभी इसमें थोड़ा चिंतन किया कि भगवान ने आपको भी कुछ फल दिए हैं, एक आवी महात्मा बना दो। आजकल महात्माओं की बहुत कमी हो रही है, महात्मा घटते चले जा रहे हैं, और क्यों घट रहे हैं, वो इसलिए घट रहे हैं कि महात्मा कहां से आते हैं, आपके पास से आते हैं, और आपने कुछ दुनिया का आज जो सिद्धांत है उसे स्वीकार कर लिया है। दो या तीन बच्चे होते हैं अच्छे,
पहले होता था,
दो या तीन बच्चे होते हैं अच्छे, फिर बाद में सूत्र चला हम दो और हमारे दो,
उसके बाद में हम दो हमारा एक। अब शायद है कि अब एक पर भी न जाए।
सोचो समाज का कितना बड़ा घात हो रहा है। आज मुस्लिमों की संख्या देख लो,
मुस्लिम किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और मुसलमान बोलता है बस भर दो।
मुसलमान कहता है बस भर दो, इस बस में जितने बैठे हमारे ही होने चाहिए, दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए,
पूरी बस भरो अपने अकेले स्वयं। अब इसका परिणाम निकल रहा है कि पाकिस्तान तो लड़के लिया था, लेकिन अब जो हिंदुस्तान लेंगे वो ऐसे ही ले लेंगे बस भर के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
मेरे मन में ऐसी इच्छा आई के बाद जरूर कहनी चाहिए, मैंने कह दी।
पर ध्यान देना, वेदव्यास जी महाराज ने अपना पुत्र छोड़ तो दिया, वापस तो लौट आए, पर मन के अंदर एक जरूर भावना रही। शिष्यों को बुलाया, कहा कि सब इधर आओ,
मैं तो वापस लौट आया हूं, पर अंदर से मेरी इच्छा है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत परिश्रम किया है, हमने इतने ग्रंथों की रचना की है, बहुत कुछ किया है,
किसी भी प्रकार से हम ये देकर के जाएं, हम देकर के जाएं। देखो मूल तो बहुत अच्छा है, मूल की जो भावना है बहुत अच्छी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। शिष्यों को बुलाया और भागवत के कुछ श्लोक तैयार कराए, जाओ। सुखदेव जंगल में गए हैं, समाधिस्थ हो गए हैं, उनके पास जाकर के इन श्लोकों को बोलो। मुझे विश्वास है हमारी कृति है, हमारी ये भागवत है, ये समाधि है, ये समाधि भाषा है। हमारे भागवत के जो श्लोक हैं वो लगी हुई समाधि को खोल सकते हैं। इतना विश्वास वेदव्यास जी को, शिष्यों को भेजा जाओ।
उस जंगल में गए जहां सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे, शिष्यों ने जाकर के वहां उच्चारण किया,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए दप्त साध्वी लेभे गतिर्धातुताम तुन्याम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी के कान में आवाज गई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे वो पूतना ने अपने स्तन में कालकूट को लगाया और भगवान को वो जहर पिलाने के लिए गई, और भगवान ने उसको माता की गति प्रदान की, माता की गति प्रदान की। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने भगवान कारुणिक हैं। अरे हम तो यह विचार किए थे, हम तो योगी इति अमलात्मा परमहंस हैं, यदि मैं कृष्ण की आराधना करूंगा तो श्याम सुंदर माखन मिश्री मांगेंगे, और माखन मिश्री में कहां से जंगल में लाऊंगा, अरे ये तो जहर भी पी लेते। इस श्लोक को सुनते ही उनकी समाधि खुल गई। ऐसे कई श्लोकों का उच्चारण किया, समाधि खुली। ब्रह्मचारी बटकों से मिले, ये श्लोक तो बहुत अच्छे हैं, कहां से? बोले मेरे गुरुदेव ने 18,000 श्लोक बनाए ऐसे, मुझे बहुत अच्छे लगे। बोले चलिए मैं अपने गुरुदेव से मिलाता हूं। वेदव्यास जी महाराज के पास मिलाए, नमस्कार किया। तब ये श्रीमद भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां से प्राप्त की, जो ये परिचित को सुनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। पारिभव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरितन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नरितन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी
होगी, घर घर में चर्चा तेरी
होगी, घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार, भव से उतर जाएगा। कहेंगे कहानी तेरी,
सब कहेंगे कहानी तेरी,
सब कहेंगे कहानी तेरी,
सब कहेंगे कहानी तेरी,
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम जैसा भी कर जाएगा,
काम जैसा बिगड़ जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भगु से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भगु से उतर जाएगा। जय राधे 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 गोविंदी राधे, जय राधे जय हो गोविंदी राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद राधे,
गोविंद राधे गोपाल राधे,
राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंदी राधे, जय राधे
हरि राधे,
जय राधे 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 गोविंदी राधे,
जय राधे 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 गोविंदी राधे,
गोविंद राधे गोपाल राधे,
गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे,
राधे गोपाल राधे,
जय राधे 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 गोविंदी राधे, जय राधे राधे
गोविंदी राधे,
जय राधे राधे राधे।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी को श्रवण कराया कि पुंडेन येन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगमो यदि लभेत सुकृतनो जनस्य।
सूत जी महाराज ने शौनकादि महर्षियों को नैमिषारण्य के पावन प्रांगण में विराजमान ऋषियों को संबोधन किया कि पुंडेन एन बहु जन्म। हे महर्षियों, ऋषि योगी अमलात्मा महात्माओं, पुंडेन येन बहुजन्म, येन बहुजन्म जिसका अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, उस पुण्य के फल से सत्संगमो यदि लभेत सुकृतनो जनस्य, सुकृतनो जनस्य, सुकृत श्रेष्ठ महान व्यक्ति का, उस संत व्यक्ति का तभी संग मिलता है जब उसके अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय हो जाता है। पुंडेन येन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगमो यदि लभेत सुकृतनो जनस्य। बिना पुण्य के महान व्यक्ति, महान संत, अच्छा संसर्ग, अच्छा वातावरण, अच्छा सामीप्य, अच्छा सानिध्य नहीं मिलता है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, कितनी सुंदर लकड़ी, कितनी सुंदर लकड़ी क्यों न हो, यदि दीमक लग जाए तो बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर लोहा क्यों न हो जाए, क्यों न हो, यदि उसमें जंग लग जाती है तो जंग लोहा को बर्बाद कर देती है। कितना निर्मल जल भरा हुआ है, यदि उसमें शिवार काई आ जाती है तो पानी को बर्बाद कर देती है। अच्छे पानी को जैसे काई बर्बाद कर देती, शिवार बर्बाद कर देती है, अच्छे लोहे को जैसे जंग बर्बाद कर देती है, अच्छी लकड़ी को जिस प्रकार से दीमक बर्बाद कर देती है, ठीक इसी प्रकार से इस आदमी को कुसंग बर्बाद कर देता है। कभी कुसंग में नहीं पड़ना, कुसंग से बचना, सत्संग से जुड़ना, सत्संग से जुड़ना, अच्छे लोगों के संग में एक बार बिना खाए रह जाना, पर सत्संग के बिना नहीं रहना। सत्संग छूटा तो बहुत कुछ छूटा, खाना छूटा तो बहुत कोई खास बात नहीं छूटी। ध्यान देना, सत्संग हमारा जीवन है, हमारी श्वासें हैं, हमारा प्राण है। सत्संग नहीं छूटना, सत्संग को नहीं छोड़ना। नीति में श्लोक आता है कि गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा और पापम तापम दैन्यम च हन्ति साधु समागम। गंगा पापम, गंगा पाप को दूर करती है। शशि तापम, चंद्रमा ताप को दूर करता है। गरीबी को, दीनता को कल्पतरु दूर करता है। गंगा तापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादियो, एक एक मिलकर के एक एक को दूर करते हैं, लेकिन गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा और पापम तापम दैन्यम च हन्ति साधु समागम। साधु के संग से इन तीनों की लुप्ति हो जाती है, तीनों की दूरी हो जाती है, ये तीनों दूर हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। सत्संग का फल, सत्संग का फल बहुत बड़ा फल सत्संग का है। भगवान थोड़ा बतलाने की कृपा करें। भागवत में, भागवत के प्रसंग के माध्यम से थोड़ा श्रवण कराने की कृपा करें, बतलाने की कृपा करें, किसका संग किसके साथ में हुआ, उसके जीवन का विकास कैसा हुआ, हमको नाम बतलाएं किसका किसके साथ संग हुआ है, सत्संग हुआ है। कोई नाम बतलाने की कृपा करो। सूत जी महाराज बोले, एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ। कहां पर हुआ महाराज? बद्रीनाथ से आगे, माना गांव से आगे, सरस्वती नदी के किनारे पर। कहां पर हुआ? सरस्वती नदी के किनारे पर। बोले, व्यास आश्रम में महर्षि नारद जी का और व्यास जी का समागम हुआ, सत्संग हुआ। भगवान बतलाने की कृपा करें, नारद जी और व्यास जी का सत्संग कैसे हुआ, कृपा करें बतलाएं भगवान। बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। महर्षि व्यास का संग, नारद जी का आगमन बड़ा ही सुखदायक है। संतो दिसंति चक्षुंसी, संतो दिसंति चक्षुंसी, वही अर्का समुत्थिता। वही अर्का, अर्का सूर्य। बोले, सूर्य जब उदित होता है, जब सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य के प्रकाश में संसार की वस्तुएं दिखती हैं। मकान, दुकान, घर, दुनिया दिखाई पड़ती है सूर्य के प्रकाश से। लेकिन संत जो प्रकाश देता है, गुरुजन जो प्रकाश देते हैं, विद्वान जन जो प्रकाश देते हैं, कौन से प्रकाश? बोले संसो दिसंति चक्षुंसी, चक्षुंसी संतो दिसंति। संत महर्षि योगी अमलात्मा महात्मा हमें जो चक्षु देते हैं, जो प्रकाश देते हैं, संतो दिसंति चक्षुंसी, उसमें क्या होता है? बोले हम उस प्रकाश से अपने स्वरूप को देखते हैं, उस परम पिता परमात्मा को देखते हैं, उस शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं। सूर्य की प्रकाश की तुलना में संत का दिया गया जो चक्षु, अंत चक्षु, बाह्य चक्षु नहीं, अंत चक्षु, बोले जो अंत चक्षु मिलता है वो अति श्रेष्ठ है। महर्षि नारद और व्यास का मिलन सरस्वती नदी का तट है। सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी महाराज विराजमान हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले किस प्रकार से बैठे हैं, यहां विवेचन कर रहे हैं। सूत जी महाराज बतला रहे हैं, अथातम सुखमाशीन, अथा तुम सुखमाशीनम उपाशीनम बृहच्छ्रवा देवर्षे प्राहु विप्रशी वीणा पाणिश्मन्विता। वीणा पाणी, पाणी वीणा, पाणी माने हाथ में वीणा को लिए हुए महर्षि नारद जी महाराज का सरस्वती नदी के किनारे पर प्रादुर्भाव हुआ। वीणा बज रही है, वीणा को बजाते हुए महर्षि नारद जी महाराज का शुभागमन हुआ। जब महर्षि नारद का आगमन हुआ, आगमन पर महर्षि नारद ने वेद व्यास जी को पूछा, देव ऋषि प्राहु, महर्षि नारद प्राहु आहु, आहु माने बोले, उन्होंने पूछा, अथतम सुखमाशीनम, हे भगवान, हे वेद व्यास जी, आप सुख से आसीन तो है ना, आराम से तो है ना, सब कुशल मंगल तो है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं है, हम आपको देख रहे हैं, आप बड़े प्रेम से आसन पर बैठे हैं, उपासीनम आसीनम, बहुत सुंदर नदी के तट पर आप आसन पर विराजमान है, बृहच्छवा, आपको देख करके मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका चित्त खिन्न है। ध्यान देना, उच्च कोटि का संत, उच्च कोटि का महापुरुष का अंतःकरण दर्पण की तरह होता है। पंचदशी में विद्यानंद जी ने लिखा है, अंतःकरण मनोवृत्ति, सुनना ध्यान से, अंतःकरण मनोवृत्ति आनंद प्रतिबिंबता, अंतःकरण मनोवृत्ति आनंद प्रतिबिंबता, जो हमारा अंतःकरण होता है। एक योगी इति अमलात्मा महात्मा का अंतःकरण इतना शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध होता है कि उसमें वो झांके तो उसे दिखाई पड़ जाता है। जैसे आप शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं, इसी प्रकार से संत का अंतःकरण हो जाता है, शीशे की तरह उसमें सब दिखाई पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात कही नारद जी ने। वेद व्यास जी नदी के तट पर विराजमान है, पर आपका चित्त खिन्न है, विकलांत है, उदासीन है। महाराज आप उदासीन क्यों हैं? आप तो बद्रीनारायण के इस पावन प्रांगण में क्षेत्र में विराजमान हैं, सरस्वती नदी प्रवाहित है, आप खिन्न क्यों, आप दुखी क्यों, आप उदास क्यों, किस लिए? मुझे बतलाएं, मुझे बतलाएं। व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही। व्यास जी बोले, नारद जी, अपनी आंख में लगी हुई कीचड़ अपने आप नहीं दिखाई पड़ती है। गीद लगी हो अपने आंख में, भले आंख दुनिया को देखती है, पर आंख में लगी हुई कोई गंदगी कीचड़ दिखाई नहीं पड़ता है। हम स्वयं अपनी आंख में लगी गंदगी को नहीं देख सकते हैं, वो दूसरा ही देख सकता है। हम क्यों दुखी हैं? हम किस लिए खिन्न हैं? हम किस लिए उदास हैं? हम किस लिए दुखी हैं? हमारा चित्त विकलांत है, क्यों है? ए भगवान, मैं नहीं बता सकता हूं। हां, इतना जानता हूं कि मेरा मन खिन्न है। ये शायद कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, आप दुखी होते होंगे, मन खिन्न होता होगा, लेकिन आप जान नहीं पाते कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों परेशान हूं। होता ना कभी, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। वेद व्यास ने बहुत अच्छी बात कही, हम दुखी तो हैं, कुछ चित्त मेरा खिन्न तो है, पर मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है कि मैं खिन्न क्यों हूं, उदास क्यों, मुझे नहीं मालूम। भगवान कृपा करें, आप ही बतलाएं इसका हेतु क्या है, क्या हेतु है, आप ही बतलाने की कृपा करें। नारद जी महाराज ने कुछ क्षण के लिए आंख बंद की और आंख बंद करके चित्त में तन्मय होकर के नारायण का ध्यान किया, जो समस्या थी उनको दिख गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आंख खोली, वेदव्यास जी ने पूछा, भगवान बतलाने की कृपा करो, क्या समस्या है, मैं खिन्न क्यों हूं, मैं दुखी किस लिए हूं। सुनो, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई। नारद जी बोले, यथा धर्मा ईशा यथा धर्म दयश्चार्थ मुनिवर्या अनुकीर्तिता, मुनिवर्या अनुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी, इथा धर्म दयश्चर्था, आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सुना ध्यान से, आप क्यों दुखी हैं? आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष मुनियः अनुवर्णितः, आपने धर्म का विवेचन किया, अर्थ का विवेचन किया, काम का विवेचन किया और मोक्ष का विवेचन किया। बड़े बड़े लंबे आपने ग्रंथ लिख दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसा ग्रंथ, नीति जैसे ग्रंथ आपने बहुत कुछ लिखा है। इथा धर्मादयश्चर्थ मुनिवर्या अनुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य, लेकिन अभी तक आपने ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, आपने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण नंद नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर की अभी तक ऐसी कोई गाथा नहीं गाई जो संपूर्ण रूपेण कृष्ण की ही गाथा हो, ऐसी गाथा आपने नहीं गाई, इसलिए आपका मन खिन्न है। ध्यान देना, ऐसा मत समझना कि एक कथा वेद व्यास जी की ही है, हमारी नहीं है, क्या ऐसा मत सोच के चलना, एक कथा आपकी हो रही है। आपने धन बहुत इकट्ठा किया है, बिल्डिंगें बहुत ऊंची बनाई हैं, कोठी बहुत अच्छी बना ली है, बैंक बैलेंस बहुत कर लिया है, धन दौलत की कोई कमी आपके पास नहीं है, दुनिया भर की विपुल संपत्ति आपके पास है, अच्छी कारें हैं, कोठियां हैं, बंगला है, नाती है, पोते हैं, बहुएं हैं, परिवार हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको सुकून शांति आपने थोड़ा घटा लो ना आप है? ये कथा केवल व्यास जी की मत बना देना, ये कथा केवल नारद जी की मत बना देना, ये कथा आपकी है, ये कथा क्या समझे, ये कथा आपकी है। आपने तो बहुत धन दौलत बहुत कुछ इकट्ठा किया है, बहुत कुछ जोड़ा है, पर आपको सुकून है क्या, आपको शांति है? बहुत कुछ जोड़ लिया, शांति क्यों नहीं? आप सोच लो, वेद व्यास जी ने तो सोचा कि बताने के लिए नारद जी आ गए हैं, और आप लोग की आप सोच लो कि स्वामी आनंद चेतन हरिद्वार से मुझे बताने आ गए हैं जी। वेद व्यास को बताने के लिए भगवान ने नारद को भेज दिया, और आपको बताने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया। आप पर बहुत धन है, संपत्ति है, यश है, वैभव है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, रूप यौवन संपन्ना अरे विशाल कुल संभवा, बहुत कुछ है आप पे, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है। भाई क्यों, क्या कारण है? कभी सोचा, कभी विचारा? अब विचार करो, अब हम आपको बतला रहे, अब आप सोचो, अब आप विचार करो कि आपने जो भी जोड़ा है, जो भी संकलित किया है, जो भी इकट्ठा किया है, वो सब ऐसे ही है, वो सब ऐसा ही है, वो साथ जाने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। जो काम आए ध्यान देना, जो काम आए, जो साथ जाने भला हो, जिससे आपका उत्कर्ष हो, जिससे आपका उत्थान हो, आपका आत्म उद्धार हो, आपका कल्याण हो, उसके बारे में भी सोचो, उसके बारे में भी। नारद जी को बहुत अच्छा उपदेश दिया, अरे आपने बहुत कुछ, आपने ऐसी कोई अभी तक कृति नहीं की जो केवल परमात्मा से ओतप्रोत हो, कृष्ण से परिपूर्ण हो, इसलिए आपके मन के अंदर खिन्नता है। नारद जी ने वेद व्यास जी की खिन्नता बता दी, और मैंने आपकी खिन्नता बता दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, ये बात है। इसलिए मैं खिन्न हूं, इसलिए आप खिन्न हैं। तो अब क्या करूं? बस आप अब यही करो, यही करो कि एक ऐसा ग्रंथ लिखो, ऐसा ग्रंथ लिखो जो केवल कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हो, कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण हो, कृष्ण की गाताओं लीलाओं से परिपूर्ण हो, ऐसा ग्रंथ लिखो। वो ग्रंथ क्या होगा? वो ग्रंथ क्या होगा? उस ग्रंथ का नाम होगा श्रीमद् भागवत। क्या होगा? श्रीमद् भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, वो होगी श्रीमद् भागवत। नारद जी बोले, ये मैं केवल आपको ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको सच कह रहा हूं, ये मेरे पर घटित बात है। भगवान की चर्चा में, ईश्वर की लीला में, भगवान के उस भक्ति में, उन भगवान के दिव्य प्रसंगों में जो आनंद है, जो रस है, जो प्रगति है, जो उत्थान है, जो बदलाव है, जो महत्ता है, हम वाणी से बखान नहीं कर सकते। ये मेरे जीवन में घटी है। कौन बोले? नारद जी, मेरे जीवन पर घटी है। हम भुक्त भोगी हैं, हम इसका अनुभव किए बैठे हैं। ऐसे आप ये बात नहीं बता रहा हूं। और ध्यान देना, जो व्यक्ति की स्वयं की अपनी अनुभूति होगी वो विलक्षण होगी। नारद जी ने कहा, अरे इसी नाम की महिमा से, इसी कृष्ण की भक्ति से, इन संतों के संग से, उनकी महिमा से हमारा जीवन बना है। हमें संग न मिला होता, हमें सत्संग न मिला होता, हमें संत न मिले होते, तो निश्चित है हमारा जीवन यहां तक नहीं पहुंचा होता, आज मैं जो नारद बना हूं, भगवान का पार्षद बना हूं, भगवान के सामीप्य में रहता हूं, भगवान के सानिध्य में रहता हूं, हर पल हर क्षण भगवान के दिव्य स्वरूप को निहारता हूं, उनके दिव्य मुखारविंद को देखता हूं, उसका केवल एक ही परिणाम है कि हम संत के सामीप्य में आए थे, हमें संतों का संग मिला था, इसलिए यहां तक मैं पहुंच गया हूं। नारद जी ने कहा, वेदव्यास कहो तो मैं आपको सुनाऊं, कहो तो मैं सुनाऊं थोड़ा अपना जीवन, मैं कैसे बना। हाथ जोड़ के वेदव्यास जी महाराज बोले, प्रभु बताने की जरूर कृपा करें, हमको जरूर श्रवण कराएं कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, आपकी यात्रा ये कैसे यहां तक पहुंची, बतलाने की कृपा करें। नारद जी महाराज ने श्रवण कराया, मैं आपको सच बतलाता हूं, मैं अति गरीब घर में जन्म हुआ बेरा, मेरी मां एक दासी थी, ध्यान देना, सुखिया से यति दूर प्रभु, ध्यान देना, सुखिया से यति दूर प्रभु और निकट दीन के जान, और दुखियन को मिलते रहे अरे दीन बंधु भगवान। जब बहुत धन दौलत मिल जाता है, विपुल संपत्ति मिल जाती है, तो व्यक्ति बिगड़ जाता है, उस प्रपंच में फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है, ईश्वर की माया है, भगवान जिसको अपने से दूर रखता है, इतनी संपत्ति दे देता है, विपुल धन दे देता है, दुनिया की वस्तुएं प्रदान कर देता है, पर अपने को दूर कर लेता है, और जिस पे भगवान कृपा करते हैं, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको दीन बना देते हैं, इसलिए अरे दीना बंधु दीनानाथ, अरे दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, भगवान को दीन बंधु कहा है, क्या कहा है, दीन बंधु, टाटा टाटा बंधु नहीं, बिरला बंधु नहीं, न भगवान टाटा बंधु हैं, न भगवान बिरला बंधु हैं, भगवान क्या है, दीना बंधु। नारद जी ने कहा, मैं एक दीन घर में पैदा हुआ, एक अकिंचन घर में पैदा हुआ, एक गरीब घर में पैदा हुआ। नारद जी ने अपनी गाथा गाई, मेरी माँ मेरा पिता तो जन्म से पहले ही गुजर गया, उदर में आया पिता गुजर गया, माँ ने हमें जन्म दिया, मेरा भरण पोषण कैसे हो, माँ किसी के घर में बर्तन झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है, हम भी माँ के साथ जाते हैं उसके घर में, कुछ हेल्प करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, घर का काम हम भी थोड़ा संभलवाते हैं, काम कराते हैं, हमें कुछ घर में खाने को मिल जाता है, माँ को भोजन मिल जाता है, जीविका चल रही है। इन केन प्रकारेण, एक बार नगर में संत आए चातुर्मास बिताने के लिए, मंदिर में संत रुके, गांव के मुखिया ने कहा, संतों का काफिला आया है, संतों का मंडल आया है, हमारी मां से बोला कि आपके इस बच्चे को संतों की सेवा में रख दूं, मेरी मां ने स्वीकार किया, हां अवश्य अवश्य रख दें, तो मुझे संतों की सेवा में रख दिया गया, मैं संतों की परिचर्या करता हूं, संतों की सेवा करता हूं, बहुत निष्ठापूर्वक सेवा करता हूं, बहुत भावपूर्वक सेवा करता हूं, संतों के उठने से पहले ही मैं उठ जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती है, संतों से पहले उठ जाता हूं, स्नान कर लेता हूं, संतों के पूजा के बर्तनों को धो देता हूं, फूल को तोड़ करके माला बना देता हूं, संतों के स्नान ध्यान के पहले हम पूजी पूरी की पूरी पूजा की तैयारी कर देते हैं, संतों को बहुत आनंद आता है, हम इस प्रकार से संतों की सेवा में आरती में पूजा में सम्मिलित होते हैं, सायंकालीन हमारे गुरुदेव कथा करते हैं, हम उस कथा में बैठते हैं, सामने बैठते हैं, दृष्टि से दृष्टि मिला के कथा सुनते हैं, इसका फल है, इसका फल है। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो दृष्टिपात से पाप जल जाते हैं। ध्यान देना, टीवी में बैठ के घर में कथा सुनना और यहां हाल में आकर के इस प्रांगण में आकर कथा सुनना, दोनों में अंतर है। यहां पर सीधी दृष्टि पड़ती है संत का, उस महात्मा का, उस प्रवक्ता का, जो भजन, जो साधना, जो उपासना वो आंख के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है, जीवन सुधर जाता है। हमारे यहां पर दृष्टिपात, जब नरेंद्र परमहंस जी के पास गया, परमहंस ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल आंखों से देखा था, केवल आंख से देखा। आंख से देखने, आंख के देखने मात्र से जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। हमारे गुरुदेव महाराज जब कथा करते हैं तो वो मुझे कई बार देखते हैं, निहारते हैं, हमारे मन में बड़ा आनंद आता है, हम बड़ा प्रसन्न होते हैं कि मेरे पुण्यों का उदय हो गया है, क्योंकि मेरे गुरुदेव की मेरे पे दृष्टि पड़ी है। गुरुदेव ने मुझे पास में बुलाया, कहा बेटा आज से तेरा नाम हरिदास है, आज से तेरा नाम हरिदास है, जगत का दास नहीं, माया का दास नहीं, दुनिया का दास नहीं, तू माया का दास नहीं है, तू जगत दास नहीं है, तू हरिदास है, हरि का दास है। हमारा नाम हरिदास रख दिया, हम संतों की सेवा करते हैं, जो प्रसाद बचता है उसी उदर का पोषण करता हूं। संतों की सेवा में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। चातुर्मास पर्यंत संत महापुरुष वहां पर विराजमान रहे, आज जब संत जाने लगे हमारी आंखों से अश्रुपात हुआ, हम रोने लगे, हम रोने लगे। मिलत एक दारुण दुख दे, अभिशुदत एक प्राण हर ले। एक वो होते हैं मिलने पर दुख देते हैं, और एक वो होते हैं जो जाने पर प्राण को हर लेते हैं। जब संत जाने लगे हमारे अश्रुपात गिरने लगे, हमने कहा मुझे भी साथ में ले चलें। संतों ने कहा तेरी मां है, इसकी सेवा कौन करेगा, जब तक मां है तुम्हें सेवा करो। हमें एक मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तक मां है आप ही पे रहो। मां के जाने के बाद तुम प्रभु के पथ बन जाना, ऐसा वहां उपदेश दिया। नारद जी बोले, संत चले गए, मेरी भक्ति में वृत्ति लग गई, मेरा मन तन्मय हो गया, मैं अपलक भगवान को निहारता हूं, आंख को बंद करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मां मेरी विक्षेप है। जब भक्ति बढ़ती है तो जगत विक्षेप लगने लगता है, जब साधना उपासना बढ़ती है तो दुनिया बिगड़ दिखने लगती है। मेरा अनुभव है, मैं अपनी बात स्वयं आपको कह रहा हूं। हमने दो वर्ष का एक अनुष्ठान किया, दो वर्ष का, हम दो वर्ष अन्न नहीं लिए, मौन रहे, दो वर्ष बोले नहीं, 24 घंटे में केवल एक घंटे के लिए बाहर निकलता था। उस समय हमें ऐसा अनुभव होता था, यदि कोई हमें कुछ बुलवाने का प्रयास करता था तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, हम बोल के बोलना पसंद नहीं करते थे कि हमें कोई कुछ कहे, कुछ आवश्यक हुआ तो स्लेट पे लिख दिया करता था। आप बोलते हो महाराज मन नहीं लगता है, आप कहते महाराज मन नहीं लगता, पर मेरी स्वयं की अपनी अनुभूति है, मैं अपने स्वयं आपको अपनी बात बता रहा हूं। नारद जी की बात तो चल ही रही है, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, मेरी स्वयं की अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति, हमने स्वयं देखा। आप बोलते महाराज मन नहीं लगता है, और मैं कहता हूं जब मन लग जाता है तो हटाने से हटता नहीं। स्थिति मेरे सामने आई है, मन हटता नहीं जब मन लग जाता है। नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे मेरी मां विघ्न लगने लगी। हे वेदव्यास जी, हे वेदव्यास जी, एक दिन की घटना, एक दिन एक ऐसी घटना घटी। एकदा निर्गताम गेहात, एकदा निर्गताम गेहात, दुहिंतिम निषदाम पथी। सर्पो अदसत पदा पृष्ठ कृपाणम कालचोदिता। हे वेदव्यासी, एक बार मेरी माँ दुहनी लेकर के गौशाला में गाय को दुहने के लिए जब चली तो रास्ते में एक काला नाग था, माँ ने डसा और माँ मर गई। माँ की अंत्येष्टि की और मैं अंत्येष्टि करने के बाद वृंदावन की ओर चला। यमुना के किनारे पे जाकर के मैंने पद्मासन लगाया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। साधना पीपल के वृक्ष के नीचे अच्छी होती, बिल वृक्ष के नीचे करो, नर्मदा के तट पे करो, गंगा के तट पर करो, किसी तीर्थ में जाके भजन करो। ध्यान देना, तीर्थ में जाके अधिक से अधिक भजन करो। गंगा के तट पर बैठ के अधिक से अधिक जप करो। वहां बहुत जीव के स्वाद में, दुनिया की बातों के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में नहीं, तीर्थ का अर्थ होता है तीर माने किनारा, स्था माने रहना। तीर माने किनारे पर, अर्थात भगवान, तीर्थ भगवान का किनारा है। तीर्थ क्या है? भगवान का सामीप्य है, भगवान के समीप में रहो। नारद जी बोले, मैं वृंदावन में चला गया, पद्मासन को लगाया है, चित्त की वृत्ति को समाहित करते हुए अंतकरण में स्थित किया है, मैं विभोर हो गया, तन्मय हो गया। ऐसा मेरे को आनंद आया, उस आनंद में मैं विभोर हो गया। कुछ क्षणों के लिए मुझे भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन हुआ, मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास, मैंने भगवान का दिव्य दर्शन किया, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो झांकी लुप्त हो गई। जब लुप्त हो गई तो मैं व्यथित हो गया, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मछली व्यथित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मैं व्याकुल हो गया। आंख खोली, थोड़ी देर में एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ध्वनि आई, आवाज आई, हे नारद, इस शरीर से नहीं, ये शरीर वासनात्मक है, इसमें वासनाएं हैं, तुम इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, इस शरीर का पात होगा और पात के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे, मेरे लोक में आओगे, तब आपको मेरा दर्शन होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो वेदव्यास, मैं यमुना में खड़ा हुआ, जप कर रहा था, जब करते करते अचानक मेरे शरीर का अंत हुआ। वो हमारा कलेवर पंचभौतिक शरीर जमुना में प्रवाहित कर गया, हमारा प्राण निकला और निकल करके भगवान विष्णु में समाहित हो गया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो सृष्टि करने पर मैं उन्हीं के द्वारा प्रादुर्भात हुआ और अब मेरा नाम नारद पड़ा। अब मेरा नाम, हे वेद व्यास जी, मैंने आपको अपने जीवन की गाथा सुनाई कि मैं क्या था, मैं नारद कैसे बना, मैं नारद कैसे बना, तो केवल संतों के सामीप्य का फल है, उस भगवत गुणानुवाद का फल है, उस भगवान की भक्ति का परिणाम है जो आज मैं इस नारद के स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो नारद जी के रूप को इस प्रकार से मैंने प्राप्त किया, नारद के स्वरूप को मैंने ऐसे प्राप्त किया। ये सब चर्चा नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी महाराज को सुनाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे।
हे वेद व्यास जी, यह जो मिलन है ये बिना प्रभु कृपा के नहीं मिलता है। इतन करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो। आप प्रयास किसी चरित्र को सुनने के बाद उसे केवल कथा बना के मत छोड़ दो। समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कथा को केवल कथा बना के नहीं छोड़ देना। ये तो भागवत की कथा है, इसे मैंने क्या लेना देना। काम था सुनना तो मैं सुन लिया, काम था सुनना तो मैंने सुन लिया। ये तो भागवत की कथा है, पोथी में रहने दो। कहा रहने दो? अरे भैया केवल पोथी में नहीं रहने दो, कथा को लो और जीवन में उतारो। क्या करो? दवाई के लाने से ध्यान देना, दवाई के लाने से, ताक में रखने से हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। दवाई मुझे खानी पड़ेगी। जुखाम दूर करना है, कोई बीमारी दूर करनी है, तो क्या अच्छे डॉक्टर दवाई लेने से मात्र से ठीक हो जाएंगे? दवाई ला करके ताक में रख दो, आलमारी में रख दो, आलमारी में रखने से हम ठीक हो जाएंगे क्या? ठीक कब होंगे? जब उसको हम खाएंगे। क्या करेंगे? जब हम खाएंगे, दवाई खाई जाएगी तभी वो लाभ करेगी, वरना। भागवत कथा को सुनो, सुन समझे, सुनो और समझो और समझ के उस पर चलो। सुन समझे जन मन मंझे अति अनुराग, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुनिए, समझिए, अनुराग पूर्वक उस पर चलने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। जब इस प्रकार का आपके जीवन में एक मोड़ आ जाएगी, मोड़ आ जाएगी, तब आप भगवान से बहुत दूर नहीं होंगे, तब आप भगवान से बहुत दूर नहीं होंगे। नारद जी ने अपना आख्यान सुनाया, आपने इस आख्यान का श्रवण किया, प्रयत्न करो कथा में बैठे बैठे। ऐसा समझो हम नारद जी महाराज हैं। हम कौन हैं? हम नारद हैं, हम नारद हैं। और नारद बनकर के, वेदव्यास बनकर के, ध्यान रखना, जब कथा में चरित्र चलता है तो आपको वो चरित्र दिखना चाहिए। जैसे हम आंखों से टीवी देखते हैं ना, चलना चाहिए, हर पात्र अपने में घटना चाहिए। अनुभव करो, अनुभूति करो, ऐसा महसूस करो, ये कथा मेरी है, ये कथा हमारे लिए हो रही है। शाम में करो, समीक्षा करो, आलोटन विलोटन करो कि इस गाथा में जो लक्षण आए हैं, जो चर्चाएं आई हैं, वो मेरे में कितनी मिलती हैं, हम उनकी दृष्टि में कितने खरे उतर रहे हैं। यदि हम में कोई न्यूनताएं हैं, यदि हम में कोई कमियां हैं, तो प्रयत्न करो कि वो दूर हों, और जैसा चरित्र में बताया जा रहा है वैसा बनने का प्रयत्न करें। किसी भक्त की गाथा चल रही है तो हम भक्त हैं, हमें भी भक्त हैं, हम में क्यों कौन कौन सी न्यूनताएं हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें, हम उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करें। यदि हम वैसा बनने का प्रयास करेंगे तो भागवत सुनने का पूर्ण लाभ, पूर्ण लाभ। हमारा कहना सफल, हमारे प्रेमपुरी आश्रम के, हमारे इन ट्रस्टियों का, हमारे प्रकाश भाई, हमारे गिरीश भाई, हमारे राजेश भाई, हमारे तमाम समस्त ट्रस्टियों का भागवत सप्ताह कराना सफल, आपका सुनना सफल और हमारा कहना सफल। कब होगा? कब होगा? वो तभी होगा जब ऐसा बनने का प्रयास करेंगे जैसा मैंने आपको अभी अभी सुनाया, अभी अभी सुनाया। हमारे जीवन की अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति है। उस दो वर्ष के अनुष्ठान में हम जैसे आपको देख रहे हैं, मैंने ऐसे भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया, जैसे आपको देख रहे ऐसे। कोई भी साधना, ध्यान देना, कोई भी उपासना निश्चित है, निश्चित है कि हमें फल देती है, यदि वो निष्ठा से की जाए, श्रद्धा से की जाए,
भावना से की जाए, जितनी निष्ठा जितनी भावना हमारे अंदर होगी उतना हमें उसका फल मिलेगा। तो बड़ी सुंदर बात है, हम इस श्रृंखला में जुड़े रहें, इस कथा का आनंद लेते रहें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक कथाएं आपको सुनाएं। हमारे ग्रीष भाई जी बोल रहे थे कि स्वामी जी प्रयास करना अधिक से अधिक कथाएं सुनाई जाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आपको कथाएं सुनाएं। आप भी प्रयास करो कि हम जल्दी से जल्दी ठीक टाइम पर आएं। आप ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे तो आप भी कथाओं को सुन पाएंगे। क्या समझी? लेट आएंगे भाई, देखो इस गाड़ी का तो ठीक अपना टाइम है और टाइम पर पहुंच जाएगी। गाड़ी को अपना टाइम से पहुंचने से मतलब होता, अब यात्री लेट आता तो गाड़ी का दोष नहीं। तो आपको समय से पहुंचना है, हम समय से पहुंचेंगे, आप भी समय से आइए। और समय पे आएंगे तो हमें कहने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो इस आनंद को हम जितना लें अधिक से अधिक लें उतना हमको लाभ है। तो बड़ी सुंदर चर्चा, बड़ी अच्छी बातें आप इस भागवत के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। मैंने अभी आपको नारद जी का चरित्र श्रवण कराया, किस प्रकार से महर्षि नारद और वेद व्यास जी का मिलन हुआ है। तो संत का संत से मिलन, भक्त सा भक्त का भगवान से मिलन, संत से मिलन बड़े पुण्यों के परिणाम से होता है। तो अनेकों जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तभी ऐसे सुयोग, तभी ऐसे योग उपलब्ध होते हैं। तो निश्चित है प्रेमपुरी जी महाराज की आप पर बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा रही। अपने यावत जीवन महाराज जी उपदेश देते रहे और जानने के बाद भी एक ऐसी श्रृंखला बना गए, एक ऐसी कड़ी चला गए, एक ऐसी लड़ी छोड़ गई कि आज भी वो लड़ी, आज भी वो कड़ी, आज भी वो श्रृंखला अनवरत चलती चली आ रही है। और मैं समझता हूं कि वो चलती चली जाएगी। हमारे इतने सुयोग्य ट्रस्टी लोग हैं प्रेमपुरी आश्रम के, ये बड़ी निष्ठा और भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक इस कड़ी को चला करके रखे हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, इस कड़ी में जुड़े रहो, घड़ी जवाब देती है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
गोविंद जय जय गोपाल जय, जय गोपाल जय जय
पाली
गोपाल जय जय